नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर गहराई से बात कर रहे हैं। नाम है प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया।
जी
इसके रचयिता हैं पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। और ये पुस्तक, जहाँ तक मुझे पता है, 1988 से 90 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है।
बिल्कुल सही। और इस साहित्य को तो पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान शरीर ही कहा था। उन्होंने वंदनीय माता जी से खास तौर पर कहा था कि मेरा ये ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा।
हाँ, मैंने भी सुना है।
और इसे मतलब उनके इस क्रांतिधर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है, तो आज हम उसी ज्ञान शरीर के एक महत्वपूर्ण अंश को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो फिर ये पुस्तक किस खास विषय या चुनौती पे केंद्रित है?
देखिए, ये पुस्तक उस समय की एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती को संबोधित करती है। पूज्य गुरुदेव ने उसे अतिवादी अवांछनीयता कहा।
अतिवादी अवांछनीयता मतलब?
मतलब समाज में जो स्वार्थपरता बढ़ रही थी, नैतिकता गिर रही थी, एक तरह की दिशाहीनता आ गई थी। और उनका मानना था कि इसका जो मूल कारण है वो है ज्यादातर लोगों की गलत सोच और गलत जीवन शैली।
अच्छा, और फिर इसका समाधान पूज्य गुरुदेव ने क्या रास्ता सुझाया? यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है।
हाँ, तो समाधान के रूप में एक बहुत ही वृहद, कह सकते हैं एक दैवी योजना सामने रखी गई, युग संधि महापुरुष चरण।
युग संधि महापुरुष चरण।
जी, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये सन 2000 तक युग परिवर्तन यानी एक सकारात्मक वैश्विक बदलाव लाने के लिए माहौल तैयार करने का एक संगठित महाअभियान था। इसमें सामूहिक जप, स्वाध्याय, सेवा, ये सब प्रमुख थे।
मुझे वो कहानी याद आ रही है जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला एक छोटा सा बीज, वो मत्स्यावतार बनकर पूरी पृथ्वी पर छा गया।
जी बिल्कुल।
तो वैसे ही ये विचार जो शांति कुंज से शुरू हुआ, वो पूरे विश्व में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता था। कितना बड़ा, कितना महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण था।
हाँ, और इस बड़े लक्ष्य को पाने का तरीका भी उन्होंने बताया। यहीं पर वो बात आती है बहुमत की संगठित शक्ति की, जिसे पूज्य गुरुदेव ने संघ शक्ति कहा।
संघ शक्ति।
जैसे वो कहते ना कि बारीक बारीक तिनके मिलकर रस्सी बन जाते हैं तो फिर हाथी को भी बांध सकते हैं।
सही बात है।
तो वैसे ही संगठित और सकारात्मक प्रयास जो है वो बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि समाज का संकट असल में लेन देन का संकट है। लेने की प्रवृत्ति, जिसे उन्होंने दैत्य प्रवृत्ति कहा, मतलब लेना ज्यादा देना कम, वो हावी हो गई है।
अच्छा,
तो समाधान था कि संगठित रूप से देने की प्रवृत्ति यानी देवत्व प्रवृत्ति, देना ज्यादा लेना कम, इसे जगाया जाए।
और इसका जो पैमाना था वो भी छोटा नहीं था। पहले 1 करोड़, फिर उसे बढ़ाकर 2 करोड़ लोगों को सन 2000 तक इस यज्ञीय भावना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था।
जी हाँ।
और ये सब अखंड ज्योति पत्रिका से जुड़े विशाल प्रज्ञा परिवार के माध्यम से होना था। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात थी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने संख्या से कहीं ज्यादा पात्रता पर जोर दिया।
पात्रता मतलब योग्यता।
हाँ, योग्यता, तैयारी, मतलब किसी बड़े उद्देश्य या दैवी सहायता का हिस्सा बनने के लिए व्यक्ति में कुछ जरूरी गुण होने चाहिए, जैसे उत्साह से भरी लगन, अपने काम में पूरी तरह डूब जाना, मतलब तन्मयता, और हमेशा अच्छा करने की, बेहतर करने की चाहत यानी उत्कृष्टता। उनका तो कहना था कि पात्र व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। जैसे बर्तन में पानी ना भी हो तो हवा तो भरी जाती है।
अच्छा, तो इसी पात्रता को और गहराई से समझने के लिए शायद उस समय परिजनों से उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थान, समय, फोटो और यहाँ तक कि हस्तरेखाओं के चित्र जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी गई थी।
हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब भविष्य बताने के लिए बिल्कुल नहीं था।
अच्छा,
नहीं, इसका उद्देश्य था व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका एक मोटा मोटा अनुमान लगाना, ताकि उन्हें उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही जिम्मेदारी दी जा सके। कुछ कुछ वैसा ही जैसे आजकल भी संस्थाओं में होता है, लोगों की योग्यता देखकर उन्हें सही काम सौंपा जाता है।
समझ गया, यानी दैवी सहायता भी उन्हीं को मिलती है जो तैयार हैं, जो पात्र हैं, ऐसा कह सकते हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। दैवी अनुग्रह या सहायता उन्हीं को मिलती है जिनमें पात्रता होती है और जो आदर्शों के लिए खड़े होने का साहस दिखाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के लिए प्रेरित किया।
हाँ।
क्यों? क्योंकि अर्जुन में वो क्षमता और पात्रता थी, भले ही वो कुछ समय के लिए मोह में पड़ गए थे, तो यहां भी पूज्य गुरुदेव का यही संकेत था कि दैवीय चेतना ही इस परिवर्तन की असली प्रेरक शक्ति है और वो पात्र व्यक्तियों के माध्यम से ही काम करती है।
और उस समय जो संदेश दिया गया उसमें एक तात्कालिकता का भाव भी था, जैसे कहा गया यह समय चूकने का है नहीं।
हाँ बिल्कुल,
जैसे इतिहास में कुछ खास मौके होते हैं जो बार बार नहीं आते, वैसे ही युग परिवर्तन की इस महत्वपूर्ण वेला का, इस घड़ी का महत्व बताया गया था।
जी, और इसके लिए बहुत व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल कदम भी सुझाए गए थे, जैसे नियमित साधना, गायत्री मंत्र जाप और सूर्य ध्यान वगैरह, फिर ज्ञाने यज्ञ यानी स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, विचारों का प्रसार करना, खासतौर पर जो 21वीं सदी के नवयुग पर केंद्रित साहित्य था। और समयदान यानी रोजाना कुछ घंटे इस महान कार्य के लिए समर्पित करना। लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, जो जागृत आत्माएं हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, वे इस नव निर्माण के प्रवाह से जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि बड़े सामाजिक बदलाव के लिए व्यक्तिगत तैयारी यानी पात्रता, एकजुट प्रयास यानी संघ शक्ति, और इन सब के पीछे एक उच्चतर प्रेरणा, कह लीजिए देवी मार्गदर्शन, इन तीनों का तालमेल बहुत आवश्यक है।
निश्चित रूप से, और ये सिर्फ किसी एक समय की योजना का ब्यौरा भर नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और समाज के रूपांतरण के उन सनातन सिद्धांतों की बात करती है जो हर युग में प्रासंगिक हैं, मतलब पात्रता, पुरुषार्थ और देवी कृपा का संतुलन।
सही कहा, और आज के समय में ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि पूज्य गुरुदेव ने जो पात्रता के सिद्धांत बताए, लगन, उत्कृष्टता, सेवा भाव और जो संघ शक्ति का महत्व बताया, उसका उपयोग आज की जो जटिल वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो पर्यावरण का संकट हो, सामाजिक असमानता हो,
जी,
उनका सामना करने के लिए कैसे किया जा सकता है, और कैसे उनका वो ज्ञान शरीर, उनका वो प्रगतिशील साहित्य आज भी हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक जीवंत शक्ति बन सकता है, ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है मुझे लगता है।